فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے ہم کلاس شروع کرتے ہیں سیرت النبی کی. تو جو ہمارا ٹپیکل سوال ہوتا ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم کیا واقعہ پڑھ رہے تھے, تو کوئی بتائے گا لکھ کر کے چیٹ ونڈو کے اوپر, گرلز میں بوائز میں؟ ہاں, یہاں لائیو اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے جواب دیا ہے, لیکن جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اگر جواب دیں. جی, کیا واقعہ پڑھ رہے تھے؟ لارجر واقعہ ایک ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اس لارجر واقعہ کے اندر ایک سب واقعہ, اسمالر واقعہ. یعنی بڑے واقعہ کا نام کیا ہے جو کہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا, اور چھوٹا واقعہ اس کے اندر کیا تھا جس پر ہم آخری کلاس میں تھے؟ جی, کوئی بتائے گا؟ غزوہ احزاب. اچھا, جنگ خندق. پچھلی کلاس میں تو ہم جنگ خندق سے آگے بڑھ چکے تھے. پچھلی کلاس یاد نہیں ہے؟ اچھا, انہوں نے جواب دیا محمد ہادی نے کہ یوم سبت کے بارے میں. ہاں ماشاءاللہ, یوم سبت کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. تو یوم سبت سے پھر یاد آیا کہ ہم کیا واقعہ پڑھ رہے تھے کسی کو, کیونکہ یوم سبت کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتانا تھا, لیکن یہ واقعہ کیا تھا؟ بنو قینقاع کے خلاف جہاد. نہیں, قینقاع کے خلاف جہاد, اتنا مشکل نام لکھنے سے فائدہ نہیں ہے. بنو قریظہ. جی, خندق کے بعد بنو قریظہ. قریظہ غا کے ساتھ ہے, تو کے بعد تو کے ساتھ جو غا ہوتی ہے نا, قریظہ سے جنگ کے لیے گئے صحابہ. جی ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر تھے. تو غزوہ خندق ختم ہو گیا, کفار جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, یعنی جو باہر سے آئے تھے نا, مکہ مکرمہ سے آئے تھے اور غطفان سے آئے تھے, وہ سب واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ یعنی اپنے گھروں کو واپس آ گئے, اور وہاں پہ آ کر کے پھر ظاہر ہے آرام کرنا تھا, کیونکہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ خندق کے وہاں پہ موجود تھے, اپنے گھروں سے دور تھے. تو ظہر کے وقت جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور انہوں نے, وہ ایک خچر کے اوپر سوار تھے, کالا امامہ پہنا ہوا تھا, اور ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آئے, یعنی ایک انسانی شکل میں آئے باقاعدہ, جو کہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک صحابی رسول تھے, ان کا آگے اور بھی تذکرہ آئے گا. تو جبرائیل امین جو ہے نا, وہ زیادہ تر انہی کی شکل میں آیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جبرائیل امین ہے, دحیہ قلبی نہیں ہے, لیکن دوسرے صحابہ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ بھئی یہ دحیہ قلبی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بہرحال, تو پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے, ہم لوگوں نے تو, یعنی فرشتوں کی جماعت نے تو ہتھیار نہیں اتارے, ہم ابھی تک جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں. ہتھیار اتارنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لڑائی ختم ہو گئی, اب ریلیکس کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی ابھی تھکے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی تھکنے کی کوئی بات نہ کریں, فکر نہ کریں, بلکہ ساتھیوں کو حکم دیں کہ بنو قریظہ پہنچے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ والا حکم دیا تھا. کیا حکم دیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو, یہ کوئی اگر بتائے کیا حکم دیا تھا؟ ٹھیک ہے, لائیو اسٹوڈنٹ بتا دیتے ہیں, آن لائن بھی بتا دیں. थोड़ा सा लिखने में तो टाइम लगता है, लेकिन हम वेट भी तो करते हैं ना आपका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था सहाबा को, याद है? एक बड़ा खास किस्म का हुक्म दिया था। ऑनलाइन गर्ल्स होती हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। जी, क्या हुक्म दिया था बनू कुरैज़ा के बारे में सहाबा कराम को? एक खास हुक्म दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी, टू प्रे असर, टू प्रे असर, वेयर असर की नमाज कुरैज़ा में जाकर के पढ़ना। ठीक है, असर की नमाज कुरैज़ा में, क्योंकि जोहर की नमाज तो ये लोग पढ़ चुके थे और फिर जो है वो सबको जमा कर लिया गया था, तो असर की नमाज जो है वो कुरैज़ा में जाके पढ़ना। तो सहाबा कराम जो है वो निकल तो गए थे, लेकिन थोड़ी सी तो देर हो जाती है, तो रास्ते में असर की नमाज जो है ना वो कजा होने लगी। तो एक जो ग्रुप था सहाबा का, दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ने कहा कि हमें वहां पहुंच करके पढ़नी चाहिए, ठीक है, और दूसरे ने कहा कि नहीं, ये मतलब नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मतलब ये था कि जल्दी करो, तो नमाज अदा करना को थोड़ी मकसद था। तो एक ग्रुप ने जो है वो रास्ते में पढ़ ली। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ बताया था इस बारे में कि दोनों ग्रुप्स जो है ना उनको नबी अलैहिस्सलाम ने एक्सेप्ट कर लिया था, और दोनों में से किसी को भी को डांटा नहीं, किसी को भी जो है ना वो गलत नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि दोनों को बात सुन ली और कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि दोनों ने सही काम किया। अब हालांकि काम तो दोनों डिफरेंट थे, राइट? एक ने पढ़ी, एक ने नहीं पढ़ी, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के दरमियान। लेकिन क्यों दोनों सही थे? इसलिए कि दोनों जो ग्रुप्स है ना उनके अंदर सीनियर साहबा मौजूद थे जो कि मुज्तहिद थे, मुज्तहिद। ठीक है, तो मुज्तहिद साहबा जो है उन्होंने फिर इज्तिहाद किया, एक का नतीजा ये निकला, यानी एक इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि नमाज पढ़ लेनी चाहिए, तो उसने पढ़ ली, और एक ने जब इज्तिहाद किया तो वो इस कंक्लूजन पे, इस रिजल्ट पे पहुंचा कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये आज के दौर में अब ऐसा नहीं हो सकता कि नमाज पढ़ने और ना पढ़ने के ऊपर इज्तिहाद किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये फर्ज नमाज है। ठीक है, अब हम इज्तिहाद नहीं कर सकते कि फर्ज नमाज पढ़े या फर्ज नमाज ना पढ़े। ठीक है, फर्ज नमाज फर्ज है, नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद ये वाला मामला खत्म हो गया कि फर्ज के बाद के ऊपर इज्तिहाद करें कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो है ना नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में मौजूद थे ना, ठीक है, उस वक्त जो है मामला डिफरेंट थे कि फर्ज के ऊपर भी इज्तिहाद, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से ही तो चीज फर्ज होती है और नबी अलैहिस्सलाम तो मौजूद थे। ठीक है, बहरहाल, तो अगर आपकी बात नहीं समझ में आ रही तो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कुछ बड़े होंगे तो और ये बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल, तो एक तो ये हो गया कि भाई इज्तिहाद जब करते हैं ना तो दोनों तरफ जो होता है ना वो यानी अगर दो डिफरेंट राय भी हो ना तो वो भी दोनों सही होती हैं। ठीक है, उसी और बहुत सारी तारीफ तफसील है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते। एक और बात बस आपको बतानी थी, वो बता करके हम आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि जब उलमाए कराम होते हैं ना, उलमाए कराम, ठीक है, जिनके पास दीन का इल्म होता है, समझ होती है, अकल होती है और नेक नियति भी होती है, नियत भी उनकी अच्छी होती है, ठीक है, तो जब भी उलमाए कराम किसी बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि सब के सब एक ही बात पे एग्री कर जाएं, जरूरी नहीं है कि सब एक ही बात के ऊपर एग्री कर जाएं, बल्कि इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तिलाफ। ठीक है, तो इस मामले में यही हुआ कि इनके दरमियान इख्तलाफ हो गया। इस इख्तलाफ को जो है ना इल्मी इख्तलाफ कहते हैं, ठीक है, यानी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बेस्ड ऑन नॉलेज, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन हेट ऑफ द अदर। ठीक है, कोई इनको आपस में एक दूसरे से कोई नफरत को थोड़ी थी, कोई दुश्मनी को थोड़ी थी, ठीक है ना, बस इल्मी इख्तलाफ में उनकी राय ये बनी कि नमाज पढ़नी नहीं चाहिए और इनकी राय ये बनी कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, देखें सहाबा के दरमियान भी ये मौजूद था, इवन सहाबा एंड इन द लाइफ ऑफ द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद था। तो व्हाट डू यू थिंक कि 1400 ईयर्स गुजरने के बाद क्या उलमा के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा? होगा, ऑफ कोर्स होगा, और आज भी ये है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना वो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्यों एक ही बात पे क्यों नहीं एग्री करते हैं, है ना। हर वक्त जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों होता रहता है। कुछ लोग जो है ना इस चीज को बहुत बुरी तरीके से मेंशन करते हैं, बहुत गलत तरीके से इसको कहते हैं कि ये उलमा जो है ना ये तो किसी एक बात पे एग्री नहीं होते, ये तो किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होते, ठीक है ना। इनको चाहिए कि अपने सारे इख्तिलाफात को खत्म कर दें और सिर्फ एक बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि भाई आज तक इनको ये जो उलमा है ना ये इसी बात पे मुत्तफिक नहीं हुए कि नमाज पढ़ने में ना हाथ जो बांधना चाहिए तो हाथ जो है वो नीचे बांधना चाहिए कि ऊपर बांधना चाहिए, सीने पे बांधना चाहिए कि नाफ पे बांधना चाहिए, है ना। आज तक तो ये इसी बात पे इत्तेफाक नहीं कर सके, है ना। तो इस बात को ना लोग गलत तरीके से मेंशन करते हैं, बहुत बुरी तरीके से, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो हाथ बांधने का मसला है या जो है वो और इस तरह के थोड़े थोड़े से जो डिफरेंसेस हैं नमाजों के अंदर, जैसे शाफी लोग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नमाज पढ़ते हैं, हनफी लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नमाज पढ़ते हैं, हत्ता कि नमाज की टाइमिंग में भी फर्क है ना। देखिए जो हनाफ हैं, हनफी फिका को जो फॉलो करते हैं, वो असर की नमाज देर से पढ़ते हैं, और जो शाफी हम्बली और मालिकी फिका के लोग हैं वो असर की नमाज जो है वो जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बुरा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इल्मी इख्तलाफ है, ये बेस्ड ऑन नॉलेज है, ठीक है। इमाम अबू हनीफा ने भी इज्तिहाद किया और इमाम शाफी ने भी इज्तिहाद किया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस नतीजे पे पहुंचे बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, ठीक है ना, अहादीस और सहाबा कराम की बातें, उन सबको जब उन्होंने देखा तो वो इस नतीजे में पहुंचे कि असर की नमाज जो है ना वो जल्दी पढ़ लेनी चाहिए, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके स्टूडेंट जो थे वो इस नतीजे में पहुंचे कि असर की नमाज देर से पढ़नी चाहिए। ये है नबी अलैहिस्सलाम सलाम की सुन्नत, ठीक है। तो ये दोनों का इज्तिहाद था, दोनों डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंचे, दोनों सही है, ठीक है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, और इसको बुरी तरीके से मेंशन करना बुरी बात है, बुरे तरीके से मेंशन करना बुरी बात है, ठीक है। तो बस ये बात हम करके अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद फिर हमने ये बात करी थी कि जब ये मुसलमान वहां पहुंच गए थे बनू कुरैज़ा के इलाके में, तो उन्होंने जो है ना अपने आप को अपने किले के अंदर बंद कर दिया था, फोर्ट्रेस के अंदर बनू कुरैज़ा के, ठीक है। तो उस फोर्ट्रेस का जो है मुसलमानों ने फिर मुहासरा कर लिया, सराउंड कर लिया उसको, और नबी अलैहिस्सलाम सलाम भी थोड़ी देर में वहां पहुंच गए। तो उस वक्त जो है ना फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो कहा था ना कि मैं वहां जा रहा हूं और मैं उनके दिलों को जो है ना वो मुतजलजल कर दूंगा, ठीक है, यानी जब फरिश्ते आ जाते हैं ना काफिरों के ऊपर मुसलमानों की तरफ से जिहाद के हेल्पर बन के जब फरिश्ते आ जाते हैं तो उनके आने से काफिरों के दिल जो है ना उनमें खौफ आ जाता है, रोब और दबदबा आ जाता है मुसलमानों का, ठीक है। तो यही इनके दिलों पर भी हुआ और ये जो है ना परेशान होना शुरू हो गए कि अब क्या होगा, मुसलमानों ने तो हमें जो है वो सराउंड कर लिया है, अब जो है हम पता नहीं क्या बनेगा, हम खाएंगे पिएंगे कैसे। तो उस वक्त इनका जो सरदार था काब बिन असद, तो उसने तीन प्रपोजल्स रखे थे इनके सामने, ठीक है। उसने कहा था कि भाई क्या कह रहे हैं आप, कैंट वी जस्ट सी द कंक्लूजन ऑफ मेजोरिटी स्कॉलर्स एंड फॉलो इट। नहीं, मेजोरिटी स्कॉलर्स के यहाँ पे मसला नहीं होता, ठीक है, यानी हाउ विल यू काउंट द मेजोरिटी, ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ये किसी एक जगह के ऊपर फॉलो नहीं बात नहीं हो रही ना, ये तो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं पे इमाम शाफी के फॉलोअर्स होते हैं, कहीं पे इमाम मालिक के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसे मुमकिन नहीं है कि यू फोर्स एवरीवन टू जस्ट फॉलो वन, ठीक है, किसी एक लोकेशन के ऊपर तो ऐसा हो सकता है, हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा एक जगह है ना, तो वहां पर जो नमाज का वक्त होता है वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के तरीके पे होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि इमाम अबू हनीफा वाले अलग टाइम पे नमाज पढ़ रहे हैं असर की और इमाम शाफी वाले अलग टाइम पे नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर एक ही टाइम के ऊपर नमाज सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप यही बात जो है वो इजिप्ट में जाके नहीं कर सकते कि वहां पे जो लोग जो है वो क्योंकि हनफी मसलक को फॉलो करने वाले ज्यादा तादाद में दुनिया में, तो इजिप्ट वाले भी जो है ना वो हनफी तरीके पे नमाज पढ़ना शुरू कर दें, राइट। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब की पॉपुलेशन को मिलाएं, हत्ता के इंडोनेशिया मलेशिया के भी आधी पॉपुलेशन को मिलाएं, तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान तो इस एरिया में, और ये लोग किसको फॉलो करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमत अल्लाह को फॉलो करते हैं, जबकि अरब वर्ल्ड जो है ये इमाम शाफी को ज्यादातर फॉलो करती है। अरब वर्ल्ड तो बहुत थोड़े से लोग हैं कंपेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश, अरब वर्ल्ड की तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो अब आप सारे अरब वर्ल्ड को फोर्स करें कि हनवी तरीके पे आप नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता और कोई जरूरत ही नहीं है ऐसा करने की। भाई वो भी हदीस से अपनी बात करते हैं, हम भी हदीस से अपनी बात करते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है किसी को फोर्स करके दूसरे तरीके पे करने की, ठीक है। एनीवे तो इन्होंने जो है ना फिर तीन प्रपोजल रखे थे, वो आपको हमने पिछले हफ्ते बताए थे। पहला तो उसने कहा कि भाई तुम सब के सब जो है ना मुसलमान हो जाओ तो मसला ही सारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जान भी महफूज हो जाएगी और तुम्हारे माल भी महफूज हो जाएंगे, तुम्हारा घर भी महफूज हो जाएगा। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं अपना दीन छोड़ते, जिद की वजह से। हालांकि इन सबको पता था कि नबी अलैहिस्सलाम सच्चे अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रपोजल ये था कि औरतों बच्चों को तुम खुद ही कत्ल कर दो, ठीक है, और फिर जो बेजिगरी के साथ तुम लड़ना, और इस तरीके से तुम लड़ोगे ना तो तुम कामयाब हो जाओगे। उन्होंने कहा कि भाई औरतों बच्चों को हम क्यों कत्ल करें, राइट। तो वो तो एक तो उन्होंने कोई कसूर नहीं किया और दूसरा है कि उनको कत्ल करने के बाद हमारी जिंदगी में कोई मजा ही नहीं रहेगा, तो हम ये भी नहीं बात मानते। तीसरी बात उसने कही कि आज जो है ना वो हफ्ते का दिन है, सैटरडे का, जिसको कि यौम सब्त कहते हैं, अरबी में यौम सब्त कहा जाता है, ठीक है। तो उस दिन जो है ना वो हम लोग कोई इस किस्म के काम नहीं कर सकते, ना लड़ाई कर सकते हैं, ना जो है वो कोई मशीनरी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कोई कोई मैकेनिकल चीज भी ये यहूदी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज जो है ना हम अटैक कर देते हैं मुसलमानों के ऊपर, तो मुसलमान जो है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि हम पे अटैक कर देंगे आज के दिन, क्योंकि आज तो उनका रिलीजियस दिन होता है, तो हम उनके ऊपर आसानी से काबू पा लेंगे। तो उस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम यौम सब्त की बेहरमती हमने पहले करी थी तो हमें जो है वो बड़ी सजा मिली थी, आज हम इसकी बेहरमती नहीं करते, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने आपको कहा था कि देखें किस किस किस्म के लोग थे, कि इनको पता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करना ये ज्यादा बड़ा गुना है, ठीक है। उसके लिए तो ये लोग तैयार थे कि नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने, उनको उनके ऊपर ईमान नहीं लेकर के आए। तो क्या इनको इतनी इतनी समझ नहीं थी कि अल्लाह के नबी को रिजेक्ट करके ये अल्लाह ताला को ज्यादा नाराज कर रहे हैं, जबकि यौम सब्त को अगर ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ये तो उसके मुकाबले में छोटी नाराजगी है, ठीक है। बल्कि हकीकत तो ये थी कि यौम सब्त तो मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत के अंदर था, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत जब आ गई, यानी नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए, तो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत जो है वो नाफिज हो गई ना दुनिया में, तो इस शरीयत के अंदर तो यौम सब्त वैसी मौजूद ही नहीं है। इस शरीयत में जो 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 दिन है स्पेशल दिन जो है वो तो जुमे का दिन है, ठीक है। लेकिन इनकी जिद की वजह से और इनकी जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत की वजह से अल्लाह ताला ने इनकी अकल ही जो है ना वो खराब कर दी थी, अकली बिल्कुल जो है ना वो उनकी यानी ऐसी हो गई थी कि इनको समझ ही नहीं आ रही थी बात, ठीक है। तो इन्होंने इनकार कर दिया। इसके ऊपर हमने आपको कहा था कि यौम सब्त के बारे में एक दो बातें बताएंगे। तो ये जो ज्यूज होते हैं ना आजकल भी, जो हेसेरिक ज्यूज कहलाते हैं या ऑर्थोडॉक्स ज्यूज कहलाते हैं, जो सबसे ज्यादा तो जाहिर है इसराइल के मुल्क के अंदर होते हैं, दूसरे नंबर पे आपको पता है कि ये दूसरे नंबर पे ये इसराइल के बाद सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कोई बताएगा? सबसे ज्यादा ज्यूज जो हैं, और वो भी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, वो इसराइल के बाद कौन से मुल्क के अंदर होते हैं, किसी को पता है? किसी को पता है? अमेरिका में होते हैं? नहीं, अमेरिका में नहीं होते एक्चुअली, जी ईरान में होते हैं, ईरान, ठीक है, जहां पे दज्जाल आएगा। दज्जाल कहाँ पे नमूदार होगा? ईरान में, इस्फहान के इलाके में, ईरान के, ठीक है। तो इनको भी पता है कि वहां पर आएगा इनका लीडर जो है, तो वो सबसे ज्यादा वहां पे जमा हुए हैं, ठीक है। फिर वहां से वो निकल करके जो है ना फिर वो दूसरी जगहों पर जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो है ना सबसे ज्यादा ज्यूज जो है ये ऑर्थोडॉक्स, बाकी ज्यूज नहीं, क्योंकि ज्यूज की भी बहुत सारी किस्में होती हैं ना, तो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ईरान के बाद किस जगह पर है सबसे ज्यादा? ये है न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है ना न्यूयॉर्क, उसके अंदर भी एक जगह है ब्रुकलिन, तो वहां पे सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत बड़े बड़े इनके टाउन्स हैं उधर, और बिल्कुल काले, सारे के सारे अपने काले ड्रेस पहनते हैं, है ना। कुछ और भी लोग हैं दुनिया में जो बहुत काला ड्रेस पहनते हैं, ठीक है ना। आजकल उनका चल भी रहा है मारपीट वाला सिलसिला, ठीक है। तो ये जूस जो है ना, ये भी काला ड्रेस पहनते हैं और काली टोपी भी ऊपर से पहनते हैं। तो ये जो है ना, ये ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर होते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद, ठीक है, आइसोलेटेड सोसाइटीज इन न्यूयॉर्क। आइसोलेटेड तो खैर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हाँ वो रहते हैं इस तरीके से अपना अपना, उन्होंने अलग टाउन बनाया हुआ होता है। फिर तीसरे, उसके बाद चौथे नंबर पे ये शायद शिकागो में होते हैं, मेरा ख्याल है शिकागो में, क्योंकि हमने देखा है बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में इनके एरियाज हैं। तो बहरहाल, तो इन जगहों पे हमारा भी जाना हुआ, तो ऐसी ऐसी इनकी फिर चीजें होती हैं कि ऑर्थोडॉक्स नहीं, ऑर्थोडॉक्स, DOX, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो रिवायती, अपने ट्रेडिशनल तरीके पे जो अमल करने वाले लोग होते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, एक्स के साथ, ठीक है। ये किसी भी चीज के ऑर्थोडॉक्स लोग हो सकते हैं, उस ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स भी कहा जा सकता है किसी को, लेकिन मुस्लिम्स के लिए ऑर्थोडॉक्स से लफ्ज लोग इस्तेमाल नहीं करते, जूस के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, फिर अब क्या कहते हैं, सैटरडे का जो दिन होता है ना इनका, सैबथ कहते हैं उसको, ये अपने इंग्लिश में या अरामैक लैंग्वेज में सैबथ कहते हैं, सबात भी इसको अरबी लोग कहते हैं, और जो मुसब्त भी इसको कहते हैं। तो इसमें जो है ना, फिर ये आप देखेंगे कि ये किसी गाड़ी वाड़ी पे नहीं बैठते, बल्कि ये पैदल चलते हैं, ठीक है ना। जहां भी घर से निकलेंगे, अपने सिनेगॉग जाएंगे, सिनेगॉग इनके वर्शिप के, इनकी मस्जिद को सिनेगॉग कहा जाता है, तो सिनेगॉग जो है वो पैदल चल रहे होंगे, यानी सड़कों के ऊपर आपको बहुत सारे चलते हुए नजर आएंगे। और फिर जो है ना, किसी अगर बिल्डिंग में इनको जाना होगा ना, जिस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगी हुई होगी, तो ये लिफ्ट पे नहीं जाएंगे, यानी अगर दूसरी फ्लोर है, तीसरी फ्लोर है, तो ये सीढ़ियों को इस्तेमाल करके ऊपर जाएंगे, ठीक है। न्यूयॉर्क नंबर 3, शिकागो नंबर 4 विद ज्यूस पॉपुलेशन, हाँ साइरस ने तो यही कहा है। ईरान नंबर 2 और इसराइल नंबर 1, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना, ये सीढ़ियां चढ़ करके सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक तो चले जा सकते हैं, लेकिन अगर 10th फ्लोर के ऊपर हो किसी का घर, या 10th फ्लोर या 12th, यानी यहाँ तो स्काई स्क्रेपर्स भी होती है ना, पता नहीं 100 100 फ्लोर वाली, तो वहां पे फिर कैसे जाए भाई चल करके। तो वहां पर जो है ना, क्या करते हैं कि लिफ्ट के अंदर चढ़ तो जाएंगे, लेकिन लिफ्ट का बटन नहीं दबाएंगे, ठीक है ना, बल्कि किसी दूसरे बंदे का इंतजार करेंगे कि वो आकर के लिफ्ट का बटन दबाए ना, तो ये भी पहुंच जाएंगे उसके साथ ऊपर, खुद बटन नहीं दबाएंगे क्योंकि मना है भाई, है ना, मशीन को इस्तेमाल करना, लेकिन मशीन के अंदर सवार तो हो गए। इस किस्म की चीजें जो है ना, वो चलती रहती हैं। बहरहाल, तो इन इन ज्यूज ने जो है बनू कुरैज़ा के तीनों प्रपोजल्स को मना कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मुसलमानों को, नबी अलैहिस्सलाम को एक मैसेज भिजवाया कि एक सहाबी थे हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजर, ठीक है, अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजर, ठीक है, कि ये जो अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, इनके साथ हमारे बड़े यानी पार्टनरशिप के रिलेशनशिप है, ठीक है ना, ये हमारे साथ बड़े फ्रेंड्स हैं बनू कुरैज़ा वालों के साथ, तो इनको ना आप हमारे पास भेज दें, तो हम इनसे जो है ना कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, तो अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहते हैं, अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनके पास भेज दिया, ठीक है। अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, वो इनके एरिया में आए, इनके किले के अंदर, और आकर के जब इनके जो जो एरिया तो कॉमन, जैसे जिरगा वाली जगह होती है ना, जहाँ पे सारे के सारे बड़े बैठते हैं, लोग आ जाते हैं, यानी एक सोर्ट ऑफ टाउन स्क्वायर, ठीक है, तो वहां पे जाकर के जब ये बैठे ना, तो सारे लोग आकर के इनके सामने जमा हो गए, और बच्चे और औरतें वगैरह भी सारी आ गई, और बच्चों ने ना आकर के रोना शुरू कर दिया, औरतों ने रोना शुरू कर दिया। तो अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बच्चों और औरतों को रोता हुआ देखा ना, तो उनका दिल जो है वो बहुत नरम हो गया, ठीक है, सामने औरतें बच्चे रो रहे हैं, तो भाई जाहिर है कोई भी देखेगा तो उसके दिल के ऊपर तो असर होगा ना। फिर इनके जो सरदार थे बनू कुरैज़ा के, जैसे काब बिन असद वगैरह, तो उन लोगों ने फिर अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मंजूर कर लें। اور آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمارے بارے میں اس کے اوپر راضی ہو جائیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال کیا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے. تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں بہتر ہے کہ تم لوگ جو ہے نا نبی علیہ السلام کی بات کو مان لو جو بھی وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ابو لبابہ نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے نا وہ گردن کی طرف اپنی گردن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ سامنے ہوتے تو ہم کر کے دکھا دیتے، لیکن اپنے جیسے ہاتھ کو جو ہے نا جیسے کرتے ہیں نا جیسے کہ گلا کاٹنا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگر ہاتھ سے جو ہے وہ آپ اشارہ کریں گے تو کیسے اپنی گردن کی طرف لا کر کے کسی کو بتائیں گے کہ جی ایسے. ٹھیک ہے، تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حلق کی طرف اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ جس سے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگا کیا، نبی علیہ السلام جو ہے نا ان کے قتل کا حکم دے دیں گے. ٹھیک ہے نا، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اندازہ تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا نا، یعنی اشارہ کیا جس سے کہ ان لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ قتل کر دیے جائیں گے، ان لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. یہ تو ایک راز تھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے قتل کا حکم دے دیں گے، یہ تو ایک راز تھا، مجھے تو یہ راز ان لوگوں کو نہیں بتانا تھا، لیکن میں نے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کر دی، خیانت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے کھول دیا. بس یہ جو ان کو خیال آیا نا تو یہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھے جو ہے نا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر جا کر کے مسجد نبوی کے جو ستون ہوتے تھے نا، اس زمانے میں مسجد نبوی کیا تھی، صرف جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے ہی چھت بنی ہوئی تھی، اور کھجور کی چھالوں اور یعنی جو 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 کلے کی بنی ہوئی دیواریں تھیں. ٹھیک ہے، چھت کے اوپر کھجور کی چھال وہ جو پتوں کی چھات وغیرہ پڑی ہوئی تھی چھت کے اوپر، اور چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے ستون یعنی پلرز کیا تھے، کھجور کے تنے. ٹھیک ہے نا، جو پرانی کھجور کے درخت ہوتے ہیں ان کے سب کچھ کاٹ پاٹ کر کے ان کا جو بیسیکلی جو تنا رہ جاتا ہے نا ٹرنک، اس کو جو ہے وہ ستون بنا لیا جاتا ہے، پلر بنا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پلرز جو تھے نا ان میں سے ایک پلر سے آ کر کے اپنے آپ کو باندھ دیا، رسی وسی کہیں سے لے کر آئے ہوں گے اور اپنے آپ کو خود سے باندھ دیا پلر سے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ میری اس گناہ پر میری توبہ کو قبول نہیں کریں گے نا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے، اور نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے نا، میں اپنے آپ کو نہیں کھول، یعنی بس میں نے باندھ لیا، اب میں نہیں کھولوں گا یہاں سے جب تک یہ جو میں نے گناہ کر دیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے راز کو ان کے دشمنوں کے اوپر فاش کر دیا، کھول دیا، اس گناہ پہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں کرے. ٹھیک ہے نا، یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا اور اللہ کی قسم کھا لی اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا، اچھا اور یہ بھی کہ میں کبھی بنو قریظہ بھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، اس جگہ کو بھی کبھی نہیں جا کر کے دیکھوں گا. اب جو ہے نا نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی نا کہ ابو لبابہ جو ہے نا وہ تو واپس آ گئے ہیں مسجد نبوی میں اور انہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور یہ قسم کھا لی ہے انہوں نے کہ میں اب یہاں سے ہلوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا نا، کہ مجھ سے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا، اور میں جو ہوں بہت یعنی شرمندہ ہوں اپنی غلطی کے اوپر، نادم ہوں، اور آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا نا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا اللہ تعالیٰ سے، معافی طلب کر لیتا اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگ لیتا آن بہاف آف ہم. ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو اب جو ہے نا جب اس نے خود سے اپنا فیصلہ کر لیا ہے نا اور اللہ کی قسم کھا لی ہے، تو اب میں بھی اس کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ کا حکم نازل نہ ہو جائے، میں بھی اس کو نہیں کھولوں گا. ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں اس سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کیا آپ بتائیے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بتائیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل جو ہے نا اس واقعے سے ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ لوگ کتنا غور سے سن رہے تھے، کون سی والی بات यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझ में आता है, वी कैन ब्रेक ए प्रोमिस। जी माशाल्लाह, ये इस प्रिंसिपल तो है ठीक है, लेकिन ये आपसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था ये वाला जवाब, क्योंकि ये तो हर बच्चा ये बात जानता है कि प्रोमिसेस को ब्रेक नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि इन्होंने खैर प्रोमिस तो नहीं किया हुआ था, वी शुड नॉट क्या कहते हैं इसको, यहाँ प्रॉमिस ब्रेक करने वाला मसला नहीं था, यहाँ तो वो था ना कि जो आप वी शुड नॉट क्या कहते हैं उसको, ट्रस्ट को, किसी ने अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट किया है ठीक है ना, तो उस ट्रस्ट को जो है वो आपको ब्रीच ए ट्रस्ट, जी वी शुड नॉट ब्रीच ए ट्रस्ट ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, जब हमसे गलती हो जाए हाँ अपने बड़ों से उसके बारे में जिक्र करें ठीक है ना। अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए ना ठीक है, तो अगर हम अपने मशायख के पास जाकर के उसको डिस्कस कर लें और उनसे जो है वो गाइडेंस ले लें ठीक है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। दिस इज द इजी वे फॉर अस ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्टली यही बात फरमाई ना ठीक है, कि अगर वो मेरे पास आता तो मैं अल्लाह ताला से इस्तगफार कर लेता उसके उसके लिए ठीक है ना, माफी तलब कर लेता। और जाहिर है इस्तगफार करने का मतलब ये भी था कि उनको भी तो बता देता ना कि भाई तुम क्या करो, तुम भी अल्लाह ताला से माफी तलाफी कर लो, दो रकअत नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से जो है वो जिसको सलातुल तौबा कहते हैं, सलातुल तौबा, सलातुल तौबा पढ़ लो, सदका खैरात कर दो अल्लाह ताला के रास्ते में है ना, और अल्लाह ताला से वादा कर लो कि अल्लाह मैं आइंदा आपसे नहीं करूं, अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा ठीक है ना, कितना आसान हो जाता। लेकिन ही चोज द मोर डिफिकल्ट वे। अब जब उन्होंने मुश्किल रास्ते को अपना ही दिया है तो बस ठीक है, अब उसकी मर्जी और अल्लाह ताला, अब इसका मामला और अल्लाह के साथ हो गया ना, अबू लुबाबा का मामला अल्लाह के साथ हो गया, अब अल्लाह जाने और अबू लुबाबा जाने ठीक है ना, समझ में आई बात ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये जवाब भी दिया है, बाकी लोगों ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली जो बात करी वो तो है ही, वो तो एक बड़ा यूनिवर्सल किस्म का एक प्रिंसिपल है जो कि आप लोगों को पहले से भी पता था। हम यहाँ पे सीरत की क्लास में आपको कौन सी नई बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मशायख के साथ ताल्लुक होना चाहिए, और अगर हमसे कोई ऐसी मिस्टेक्स वगैरह हो जाएं तो हमें खुद से जो है ना वो कोई अपने ऊपर बहुत बड़ी किस्म के इस किस्म के डिसीशन नहीं ले लेने चाहिए अपने लिए ठीक है ना, क्योंकि समटाइम्स इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस है ना। हर कोई अबू लुबाबा जैसा नहीं होता ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठीक है ना, हम अगर इस किस्म का कोई डिसीजन लेंगे तो शैतान भी जो फिर हमें आकर के बड़ी आसानी से बहका सकता है, बड़ी आसानी से हमारे हिम्मत को तोड़ सकता है ठीक है ना। तो भी इस तरीके से हम यानी अपने आप को जो है ना जरा आजजी इख्तियार करनी चाहिए अपने बड़ों के सामने, ये बात आपको समझानी थी ठीक है जी। एंड इफ यू टेक गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स इट विल बी मोर इजी, बट ही चोज द डिफिकल्ट वे जी। We should not have the habit to disclose everything to everyone. हाँ, everything to everyone वाली बात भी है इसके अंदर। भाई आपने दुश्मनों को जाकर के जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की राज वाली बात बता दी ठीक है ना, बल्कि हम तो जो अंकल्स वाली क्लास है सूरह यूसुफ की तफसीर इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तो सूरह यूसुफ की तफसीर के अंदर तो हम ये बात भी तफसीर से समझा रहे हैं कि दुश्मनों को बताना तो दूर की बात, इवन दोस्तों को भी हर चीज नहीं बतानी चाहिए, इवन अपने दोस्तों को भी हर चीज नहीं बतानी चाहिए ठीक है। वहां पर भी यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि कौन सा दोस्त जो है ना वो बहुत मैच्योर है, इल्म वाला है और दीनदार है, नेक है, सिर्फ उसको हम बता सकते हैं, वरना हम दूसरे दोस्तों को भी नहीं बता सकते ठीक है। बहरहाल तो अब जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो आ गए, उन्होंने बांध दिया अपने आप को ठीक है ना, तो वो एक सिलसिला चल रहा है अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो बंदे में, और जब नमाज का वक्त होता था, देखिए नमाज फर्ज है ठीक है ना, अब वहां पर ये अल्लाह वाली कसम नहीं चलेगी कि मैं नहीं खोलूंगा, नहीं नमाज फर्ज है, तो नमाज के वक्त क्या होता था कि दूसरे सहाबा कराम जो है ना वो उनको खोलते थे, ये मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ते थे, जाहिर है वजू करके ही नमाज पढ़ते होंगे, बगैर वजू को तो नमाज पढ़ना जायज ही नहीं है ठीक है, तो वजू करते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, फिर उसके बाद दोबारा बांध दिया ठीक है ना, खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया, मैं तो खाऊंगा ही नहीं ठीक है ना, तो پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بنو قریظہ کے باہر تھے نا, وہاں پہ جو ہے وہ جو ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو بنو قریظہ جو تھے ان کے جو ہے نا وہ انصار میں سے, آپ کو پتا ہے نا انصار کے دو قبیلے ہیں مشہور بڑے بڑے, جو دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج, ٹھیک ہے نا, انصار مدینہ کے یہ قبیلے, باقی اور بھی قبیلے تھے دور دور جو رہنے والے تھے, لیکن مین مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, ٹھیک ہے نا. اوس اور خزرج کے آپس میں بھی جو ہے وہ ماضی میں بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, بڑے لمبے لمبے ان کے پھڑے ہوتے تھے, ہے نا. یاد ہے کہ انہی لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے تھے حج کے موقع پر, جب وہ انہوں نے بیعت عقبہ وغیرہ کری تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر, ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اور اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائیاں ہیں نا ان کو ختم کر دیجئے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں جو ہے وہ ایک ہم اب پیس میں رہنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اوس اور خزرج میں ہسٹوریکلی لڑائیاں رہتی تھیں, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے اپنی ان لڑائیوں میں اسسٹنس کے لیے جو یہودیوں کے قبیلے تھے نا ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو قبیلہ خزرج نے یہ بنو نضیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا تھا دوستی والا, ٹھیک ہے نا, کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو بنو نضیر ہماری مدد کرے گا, ٹھیک ہے نا. بنو نضیر کا واقعہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس کو بریچ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو باہر نکال دیا, ہے نا, کہ تم اپنا اسلحہ چھوڑ کر کے باقی ساری چیزیں لے کر کے جا سکتے ہو. وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نضیر کو جانے کی اجازت دی تھی نا, تو اس کے اندر بھی ڈیٹیل یہ تھی کہ خزرج والوں نے جو ہے نا وہ بنو نضیر کے بیہاف پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ریکویسٹ کری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم خزرج کے جو قبیلے والے ہیں ہمارا بنو نضیر کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی کا ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ان کے لیے تھوڑی سی نرمی فرما دیں, ٹھیک ہے نا, ہم ان کے بیہاف پر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے تھوڑی نرمی فرما دیں اور جو ہے نا وہ ان کو جانے دیں یہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خزرج والوں کی بات مان لی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ خزرج والے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے. اچھا, خزرج میں وہ بھی شامل تھا جو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی, یہ بھی خزرجی تھا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اس نے تو بڑی زبردست طریقے سے بنو نضیر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد سے نرمی مانگی ہوگی, ٹھیک ہے. بہرحال بنو نضیر کو جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کی اجازت دے دی تھی. اب ان میں سے اکثر جو ہے وہ خیبر منتقل ہو گئے تھے اور کچھ جو ہے وہ شام چلے گئے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, اوس والوں کی جو ہے نا وہ ایگریمنٹ تھی, اوس والوں کی ایگریمنٹ تھی کس کے ساتھ, بنو قریظہ والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, دوستی کا تعلق بنو قریظہ کے ساتھ جو تھا نا وہ اوس والوں کا تھا, ٹھیک ہے. تو اوس والوں نے نا اس موقع پر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح بنو نضیر کے معاملے میں آپ نے خزرج والوں کی بات مانی تھی نا اور ان کے ساتھ نرمی فرمائی تھی, تو بنو قریظہ کے معاملے میں آپ ہماری بات مان لیجیے اور ان کے لیے نرمی فرما دیجیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ایک وہ دوستی والا ایگریمنٹ تھا, ٹھیک ہے. دوستی والے ایگریمنٹ سے مراد یہ تھا کہ ناٹ ایگزیکٹلی وہ والی قلبی دوستی اور محبت والا ایگریمنٹ نہیں تھا, بلکہ ایک وار کے اندر ہیلپ کرنے والا ایگریمنٹ تھا, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس والوں کو جواب دیا کہ کیا یہ تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ تمہارا ہی ایک سردار جو ہے وہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرے کہ ان کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے, تمہارا ہی ایک سردار اوس کا سردار, ٹھیک ہے. تو اوس والوں نے جب یہ سنا نا کہ نبی علیہ السلام کے ہماری ایک سردار, تو ہاں سردار کی بات تو ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سردار ہم نے کسی کو بنایا ہوتا ہے اسی لیے بنایا ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس کی بات مانیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اگری کر لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس فیصلے کا اختیار تمہارے ہی سردار کس کو دیتا ہوں, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی, سعد بن معاذ جو کہ اوس کے سردار تھے, ٹھیک ہے, انہی کو میں फैसले का हक देता हूँ कि वो फैसला करें कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो औस वाले खुश हो गए, हाँ बहुत, हाँ यह हमें मंजूर है कि हमारी सरदारन के बारे में फैसला करे। ठीक है, अच्छा 7 दिन मुआजरतान के बारे में आपको याद है, हमने कुछ बात आपको बताई थी पिछली क्लास के अंदर, 7 दिन मुआज, 7 दिन मुआज के बारे में कुछ हमने आपको कहा था, कोई स्पेशल सी बात कही थी। वैसे तो वाकयात तो और भी थे कि उनके साथ ये हुआ, उन्होंने ये किया उन्होंने, लेकिन एक बड़ी स्पेशल बात उनके बारे में आपको बताई थी, 7 दिन मुआज, किसी को याद है? अंसार में 2 साद थे, सादैन जिनको कहते थे, 2 साद, एक तो थे 7 बिन उबादा रजी अल्लाह तआला, ये थे खजरज के सरदार, और एक थे 7 बिन मुआज रजी अल्लाह तआला औस के सरदार। एक तीसरे भी साद रजी अल्लाह तआला बहुत मशहूर है, वो कौन है? 7 बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला, राइट। वो तो अंसार में से थे ही नहीं, वो तो मुहाजरीन में से थे, है ना, अशरा मुबशरा बिल्कुल शुरू के जो लोग मुसलमान हुए थे उनमें से थे, हजरत 7 बिन मुआज, 7 बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला, ये कुरैश में से थे। अंसार में 2 साद थे, 7 बिन उबादा खजरज के सरदार और 7 बिन मुआज औस के सरदार। ठीक है, तो 7 बिन मुआज के बारे में एक स्पेशल बात आप लोगों को क्या बताई थी पिछली क्लास का, किसी को याद नहीं? उन्होंने दुआएं मांगी थी, ये तो वाकया हो गया ना कि वो अपनी अम्मी से मिलने के लिए गए थे, और जैसे ही वहां से मिल करके निकले थे तो उनको एक तीर आ करके लगा था और जख्म उनको उनमें से खून जारी हो गया था। उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थी कि अगर जो है ना वो मजीद अटैक्स होने वाले हैं तो अल्लाह मुझे जिंदा रख, है ना, कुरैश मक्का अगर मजीद अटैक्स करने वाले हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर अटैक में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करूं, तो आप मुझे जिंदा रखिएगा, लेकिन अगर अटैक्स खत्म होने वाले हैं, अब इसके बाद और कोई अटैक नहीं होने वाला है, तो ऐ अल्लाह मुझे आप शहादत अता फरमा दीजिए। ठीक है ना, लेकिन एक और बात आपको हमने जो बताई थी ना वो ये थी कि ऐसा लगता है कि हर वाकये में ना, जो बड़े वाकया थे ना उनमें हर वाकया किसी वन किसी एक पर्सनालिटी के लिए बड़ा स्पेशल स्पेशल वाकया हुआ करता था। ठीक है ना, मेराज जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का अपना स्पेशल वाकया था, मेराज। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मदीना मुनव्वरा की हिजरत, उस हिजरत के अंदर कौन मैन ऑफ द मैच, राइट, ठीक है, मैन ऑफ द डे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। ठीक है ना, फिर जो है ये जाहिर है ये जो क्या कहते हैं वाकये इफ्क था, वाकये इफ्क के अंदर जो है वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला वाज द मेन पर्सनैलिटी। ठीक है ना, ओहद के अंदर हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला वाज मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द डे। ठीक है ना, उसी तरीके से अहजाब के अंदर ऐसा लगता है कि हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला ने इज एवरीवेयर, ही इज द मेन पर्सन इन गजवा खंदक। ठीक है, तो साद रजी अल्लाह ताला के का यहाँ पर भी मामला हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि 7 फैसला करेंगे। ठीक है, तो साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला जो है ना जब जख्मी हो गए थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में उनके लिए एक एक स्पेशल खेमा बनवा दिया था, और वहां पर आप रज़ी अल्लाह ताला जो है वो वहां पर उनका इलाज हो रहा था। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम उनकी इयादत भी कर लिया करते थे जा करके। ठीक है, अच्छा अब नबी अलैहिस्सलाम गज़व यानी मस्जिद नबी में गोया के वापस आ चुके हैं। ठीक है, और जो बनू कुरैजा वाले हैं ना उन्होंने सरेंडर कर दिया है, बनू कुरैजा वालों ने सरेंडर कर दिया है नबी अलैहिस्सलाम को, अब जो है ना वो फैसले की बात हो रही है कि क्या किया जाए इनके साथ। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम इज बैक इन मस्जिद नबी। ठीक है ना, अब जो है ना वो साद रजी अल्लाह तआला को नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको उनके खेमे से लेकर के आओ। तो साद रजी अल्लाह तआला जो है वो उनको जख्म तो हुआ हुआ था, लेकिन जख्म में कोई इतना ज्यादा गहरा जख्म अभी नहीं था, खून नहीं निकल रहा था उस जख्म में से। ठीक है, तो साद रजी अल्लाह तआला जो है ना फिर एक गधे पर, ठीक है, क्योंकि गधा भी जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लोग जो है ना वो डोंकी के ऊपर भी सवारी किया करते थे। ठीक है ना, ज्यादा बड़े डिस्टेंस के लिए खच्चर के ऊपर और उससे भी ज्यादा बड़े डिस्टेंस के लिए घोड़े के ऊपर सवारी किया करते थे। तो सादतन जो है वो एक हैमार के ऊपर यानी डोंकी के ऊपर सवार होकर के नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए। ठीक है ना, जब आप के पास पहुंचे ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने औस वालों को जो बैठे हुए थे आप के पास हुक्म दिया قومو الى سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے سردار کی عزت کرو، ان کو جو ہے وہ ڈونکی پر سے اترنے میں ان کی ہیلپ کرو، ہی از سک، ہے نا، ان کو جو ہے وہ زخم لگا ہوا ہے، تو ان کو اتار کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ. تو بنو یہ جو اوس کے صحابہ تھے وہ گئے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بٹھا دیا. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے نا اپنا فیصلہ آپ کے سپرد کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ فیصلہ کریں کہ بنو قریظہ کا کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بنو قریظہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جو کمبیٹنٹس ہیں، کمبیٹنٹس جو ہے نا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ جنگ کے اندر ایکچولی فائٹ کیا کرتے ہیں، باقی بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جنگ میں انوالو ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ فائٹ نہیں کر رہا ہوتا، بہت سارے لوگ سپورٹنگ سٹاف ہوتے ہیں، جیسے کہ جو فوج کے لیے کھانا بنانے والے، فوج کے لیے جو ہے وہ مرہم پٹی کرنے والے، ٹھیک ہے نا، پانی پلانے والے، یہ سپورٹنگ لوگ ہوتے ہیں. کمبیٹنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کم لوگ ہی ہوتے ہیں، جن کو کہ جو کہ ایکچولی ایبل باڈیڈ ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں، جن کو ویپنز کو جو ہے وہ چلانا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو سعد نے فرمایا کہ ان کے جو لڑنے والے کمبیٹنٹس ہیں نا، یعنی جو مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، جوان اور بڑی عمر کے، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتیں اور بچے جو ہے نا ان کو غلام اور لونڈی بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، اب تو جو ہے وہ پکڑ کر کے خالی پریزن میں ڈال دیتے ہیں نا، لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا تھا. یہ ایک پوری بڑی یعنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے غلام اور لونڈی بنانا. ٹھیک ہے، تو یہ سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا. اور تیسری بات کہ ان کا جو مال و اسباب ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سعد تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا بھی یہی ارادہ تھا، اللہ کی مرضی بھی اسی میں تھی کہ بنو قریظہ کو سپیئر نہ کیا جائے، اور تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو کہ اللہ اس کے رسول چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو آلریڈی اگریمنٹ ہو چکا تھا اس بات کے اوپر کہ سعد رضی اللہ عنہ جو بھی کہیں گے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر ایسے ہی کیا گیا کہ بنو جو قریظہ والے تھے، مرد جو تھے نا، تو ان کو پھر قتل کر دیا گیا. اور جو جنہوں نے اس وقت کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے نا، لیکن باقی لوگوں نے جنہوں نے آخری وقت تک بھی جو ہے نا وہ اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. حتیٰ کہ ان کا جو سردار تھا نا ایک کعب بن اسد اور حیی بن اختب، ٹھیک ہے، تو حیی بن اختب جو تھا ایون جسٹ بیفور ہی واز بینگ کلڈ اس نے نبی علیہ السلام کو بہت برا بنا ہے نا، یعنی اتنا زیادہ یہ لوگ سخت تھے کہ سب کچھ جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سبمٹ کرنے کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس ان لوگوں نے آخری وقت تک معافی نہیں مانگی، ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، اپولوجی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بٹ دے ڈڈ ناٹ چوز اٹ. تو پھر ان کی مرضی کے مطابق پھر ان کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کے جو ویمن اینڈ چلڈرن تھے تو ان کو جو ہے وہ پھر وہاں بھیج دیا گیا، کیا کہتے ہیں، شام کے علاقے میں کچھ کو بھیج دیا گیا اور کچھ کو جو ہے وہ نجد کے علاقے میں، جہاں پر کہ ریاض اور قصیم وغیرہ کا جو علاقہ ہے نا، نجد پورا یہاں پہ پھر ان کو بھیج کر کے، اور پھر وہاں سے جو ہے نا، یعنی جو اس زمانے کا طریقہ ہوتا تھا کہ غلام اور لونڈی وغیرہ کو جو ہے وہ بیچ کر کے پھر ان سے پیسے حاصل کیے جاتے تھے. تو اس طریقے سے غزوہ بنو قریظہ جو ہے نا وہ تو ختم ہو گیا. اور اس کا جو ایک سائیڈ میں ایک دوسرا قصہ چل رہا تھا وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم تو ایکچولی ختم ہو گیا کلاس کا، اس وجہ سے ہم یہاں پہ کلاس ختم کر دیتے ہیں. اور باقی جو خالی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا وہ ابھی کلاس کے اندر مکمل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو جلدی سے ابھی پوچھ لیں. Any questions? ठीक है, नहीं है कोई सवाल तो हम क्लास को फिर बंद कर दें. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.